श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तेरह भाव दिवस है, तेरह भाव तिथि है। इस अवसर पर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए बंदे की सभी वरिष्ठ भक्तों का धन्यवाद। अवसर इसलिए प्रदान किया जाता है इन वैष्णवों का स्मरण कर सके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर प्रदान किया कि अध्ययन करें वैष्णवों के बारे में, उनका स्मरण करें और फिर उनके बारे में बोल के अपने आप को पवित्र करें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर खुद बोलते हैं, वैष्णवेरा गुणगान कोरिला जीवेरा त्राण सुनिया छे साधु गुरु मुखे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर जीव का पूरी रूप से त्राण, पूरी तरह से संसार के बंधनों से मुक्ति हो सकती है तो उसकी सबसे सरल विधि है कि वैष्णवों का गुणगान किया जाए और सुना जाए। तो आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में चर्चा करेंगे और उससे पहले अनुरोध करेंगे कि हमें आशीर्वाद दें रुक्मिणी कृष्ण को कि हृदय से उनका गुणगान कर सकें, अपने हृदय में बिठा सकें। हरे कृष्ण। सो आज नरोत्तम दास ठाकुर का तेरह भाव तिथि है और उन्हीं के महिमा गान में आज सुबह का ये भागवतम क्लास है समर्पित किया जा रहा है। कोई भागवतम इत्यादि श्लोक नहीं लिया गया क्योंकि वैष्णव का गुणगान श्रीमद् भागवतम से अभिन्न। एक बार हम प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहे थे तो वहाँ प्रभुपाद जी से उनके डिसाइपल किसी वेस्टर्न जो संत के विषय में चर्चा करते हैं, तो बड़े विख्यात संत थे, तपस्वी थे, तो उनके बारे में जब प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद जी से बोले कि क्या प्रभुपाद जी अगली बार जब भागवतम लिखी जाएगी तो उनका गुणगान उसमें लिखा जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले, भागवतम को लिमिटेड मत समझो, भागवतम अनलिमिटेड है। जो वैष्णवों का गुणगान है वो भागवतम से अभिन्न है, तो वैष्णवों का गुण महिमा, उनकी लीला चरित्र, वो सब भागवतम का ही विषय है, विस्तृत रूप है श्रीमद् भागवतम का। नरोत्तम दास ठाकुर का हम जीवन चरित्र तो पूरे आधे घंटे के अंदर चर्चा नहीं कर सकते, उनके कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी लीलाओं से हम कुछ सीख सकें कि हमारे हृदय में भी आकर्षण जागृत हो श्री श्री गौर नित्यानंद के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, जैसा उनके हृदय में था उसका एक अंश भी हमारे हृदय में आए तो हमारे जीवन की सफलता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव माघ पूर्णिमा पे हुआ था। कब हुआ था? माघ पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा। और आज क्या तिथि है? पंचमी। पंचमी तिथि आज। नरोत्तम दास ठाकुर माघ मास की पूर्णिमा पर आविर्भूत हुए थे और उनके जन्म से ही उनके शारीरिक लक्षण बताते थे कि वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और कैसे कैसे वो वैष्णव थे इस बात का वर्णन तो उनके जन्म से पहले ही हो चुका था। जब श्री गौर हरि वृंदावन यात्रा के लिए निकले, कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। वास्तव में वो वृंदावन की यात्रा के लिए निकले ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो वृंदावन की यात्रा के लिए निकलते तो डायरेक्ट वृंदावन की तरफ जाते, उनको हरे कृष्ण ईस्टर्न बंगाल की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो बांग्लादेश और उस तरफ प्रवेश करने लग गए, राम के लिए चले गए। तो ये तो महाप्रभु का बहाना था अपने भक्तों के दर्शन प्राप्त करना, जैसे शिल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि के, और संसार को नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा का गान बताना, इसी कारण से निकले थे। तो महाप्रभु राम के लिए होते हुए अब जब वापस चलने लगे तो पद्मा नदी के पास पहुँचे। खेतुरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके पास ही गनारहट का नाम से एक गांव है, उसके पास पहुँचे श्री गौर हरि और उद्दंड कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उद्दंड कीर्तन, उस कीर्तन में हर भक्त प्रेम विवल था। महाप्रभु के समय पे दो ही चीजें होती थी, आंखों से अश्रुपात और मूर्छित होना कीर्तन शुरू होते ही। और वो चीजें आज भी होती हैं, पर वो भागवतम के समय होती हैं, आंसू नहीं निकलते, केवल मूर्छित होते हैं। उस समय कीर्तन में हुआ भी रहता था ये। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर के क्षेत्र जहां पे नरोत्तम दास ठाकुर का विवाह हुआ, खेतुरी के पास, जब महाप्रभु दंड कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु प्रेम विवल उनकी आंखों से ऐसे अश्रुपात हो रहा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गौर हरि बोले और जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया वहां पे नित्यानंद गौर हरि, नरोत्तम 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 नरोत्तम। तो सब भक्त जानना चाहते थे नरोत्तम कौन है। आसपास कई लोगों ने पूछा, नरोत्तम नाम का व्यक्ति रहता कोई यहाँ पे, नरोत्तम रहता कोई? कोई नरोत्तम नाम का समय व्यक्ति नहीं था। ये भी अद्भुत बात थी, इतने बड़े क्षेत्र में आसपास कोई नरोत्तम नाम का व्यक्ति नहीं था। तब भक्तों ने अंदाजा लगा लिया कि इसका अर्थ है कि कोई महाविभूति इस संसार में जन्म लेने वाली है, और जिसका नाम होगा क्या, नरोत्तम। नरोत्तम नाम की कोई विभूति इस संसार में जल्दी जन्म लेने वाली है, और महाप्रभु उनके नामों का उच्चारण कर करके जो है ऐसा नर्तन कर रहे थे मानो कि वो कृष्ण प्रेम में विवल होकर के कीर्तन कर रहे। जितना कृष्ण के नाम में वो आनंद लेते थे, उतना ही आनंद वो नरोत्तम के नाम में लेने लगे। और फिर धीरे धीरे पद्मा नदी के पास पहुंचे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले, हे निताई, ये जो तुम्हारे अश्रु बह रहे हैं, ये अश्रु जो हैं विफल नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे इस धरती पर। ये तुम्हारे अश्रु हम सबके जाने के बाद भी प्रेम की बाढ़ इस संसार में बनाए रखेंगे। महाप्रभु उनके अश्रुओं को लेते हैं, ये एकदम सीवेबल है, भौतिक संसार में नहीं होती ऐसी चीजें, भगवान कह सकते हैं, उनके अश्रुओं को लेते हैं और पद्मा नदी को बोलते हैं कि ये निताई के जो प्रेम स्वरूप अश्रु हैं, इनको अपने पास संभाल के रख दो। ऐसा वर्णन आता है प्रेम विलास में, इनको संभाल के अपने पास रख लो, और जब उनको देने के लिए जैसी प्रवेश करते हैं महाप्रभु उस जल में, उस जल में ऐसा अद्भुत उफान आता है, उछालने लगती है, उछाल मारने लगती है नदी। तो पद्मा नदी जो है विवल होकर पूछती है, प्रभु इसका मैं क्या करूं, संभाल के रखूं? बोले कि मेरा एक भक्त आएगा नरोत्तम, जब वो तुम्हारे जल में स्नान करेगा, इन अश्नों से उसको स्नान करिए, प्रेम दान देना। पद्मा नदी ने पूछा, ये पद्मा नदी जो है गंगा जी की एक ब्रांच है, पूछा कि प्रभु मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वही भक्त है जिसको मुझे ये नरोत्तम, वही नरोत्तम है जिसको मुझे ये प्रेम दान देना है? तो महाप्रभु ने बोला, जैसा आज तुम्हारे जल में उफान आ रहा है, उसके प्रवेश करने पे भी ऐसा ही उफान आएगा, तब तुम समझ जाना कि नरोत्तम प्रवेश कर गया है, और उसको ये प्रेम दान दे देना। वास्तव में महाप्रभु ने जिनको प्रेम दान देना था, देखिए क्या सौभाग्यशाली जीव है, एक तरफ तो हम जो हैं, हमारा जीवन बीतता जा रहा है और खत्म होने को आ गया, और प्रेम का तो ABCD भी अभी नहीं पता चल पा रहा, मतलब कुछ लोगों को पता चल चुका है, जनरली नहीं पता चल पा रहा। और स्वयं जो है महाप्रभु खुद भी बोल रहे हैं अपने बारे में, महाप्रभु महाभागवत मतलब स्वयं भगवान है, पर एक भागवत की भूमिका निभाते हुए बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रेम नहीं है, और प्रेम कहाँ मिलेगा, वैष्णव चरणों में। बोले मैं गरीब हूँ, असली गरीब कौन है, प्रेम धन व्यर्थ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, नौकर कौरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। हे प्रभु मुझे नौकर बना लो और मुझे सैलरी भी देना, सैलरी में मुझे प्रेम धन देना, क्योंकि बिना प्रेम के तो ये जीवन व्यर्थ है, गरीब है, दरिद्र है ये जीवन। दरिद्र वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन की कमी है, दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास प्रेम नहीं है, क्योंकि सर्व सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में वो असली आनंद नहीं है, वो सुख नहीं है, जो केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकता, अन्य किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रेम, अगर कोई सोचे कि इस संसार की किसी वस्तु से हमारे को प्रेम हो सकता है, तो वो एक भ्रांति है। क्या है वो? भ्रांति है। इस संसार में किसी को किसी से प्रेम नहीं होता, इस संसार में किसी को किसी से क्या विश्वास है आप सबको? इस संसार में किसी को किसी से नहीं होता। क्या होता है फिर? काम होता है, लस्ट होता है। वो जो गाते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता, वो प्यार के विषय में चर्चा नहीं है, वो काम के विषय में है। काम किया नहीं जाता हो जाता है। आपको विचार नहीं करना पड़ता कि मैं लस्टी होना चाहता हूँ। किसी को विचार करना पड़ता है कि मैं थोड़ा सा लस्टी फील करना चाहता हूँ? सोचना पड़ता है ऐसा? नहीं सोचना पड़ता। स्वाभाविक रूप से इस संसार में जन्म लेते ही काम वासनाएं स्वाभाविक रूप से हैं। जो करना पड़ता है उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। परंतु ये एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, इनके जन्म से पहले ही इनके लिए प्रेम की धरोहर रख दी गई है कि इनको तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। विभूति है। अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जब जन्म हुआ, माघ मास की पूर्णिमा पे, बड़ी ही शुभ तिथि है ये अपने आप में, इस शुभ तिथि पे जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने जन्म लिया तो इनके घर परिवार वाले और जो एस्ट्रोलॉजर थे, इनके पिताजी कृष्ण दत्त थे, इनकी माता का नाम हमें याद नहीं है, नारायणी देवी नहीं, पद्मा समथिंग, पद्मावती या कुछ इस प्रकार से था, नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम था। नारायणी देवी भी हो तो कृष्ण दत्त जो हैं, राजा थे वो पूरे क्षेत्र के, उनके भाई थे पुरुषोत्तम दत्त। और जब इनके यहाँ पे जन्म लिया तो बहुत सारी शहनाइयाँ इत्यादि बजाई गई, और जब एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको देखा तो वो देखते ही बोले कि इसके अंदर तो महापुरुषों के लक्षण हैं। पर एस्ट्रोलॉजर्स ने एक और विशेष बात बताई कि इनकी सुरक्षा करनी होगी। किस चीज से? जल के आगार से। किससे? जल के, जहां पे बहुत सारा जल हो, जैसे कुंड, नदी, समुद्र, इनसे इसकी रक्षा करनी होगी। अगर जल के आगार के संसर्ग में यह आया तो संभावना है कि आप पुत्र सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया कि बच्चे को बचा के रखें। इनके अब ये जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अब इनको घर में बुलाया करते थे क्या? नारू। क्या? नारू। अब नारू कह के इनको घर में माता जी बुलाती थी, पिताजी भी बुलाते थे, घर में बड़े ही लाड प्यार इनको मिलता था। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी इनकी। पढ़ने के लिए भेजा तो बहुत ही तेजी से जो है सारे विषयों को पे दक्षता प्राप्त कर ली। और साथ ही साथ वहां पर एक कृष्णदास नाम के संत रहते थे जो कि महाप्रभु के चरणों में अनुरक्त थे, विरक्त थे, विरक्त संत थे, जिनको आजकल हम बाबा जी इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, ऐसे विरक्त व्यक्ति थे। तो नरोत्तम को उनके पास जाना या नारू को उनके पास जाना बड़ा प्रिय लगता था। और जब भी नरोत्तम उनके पास जाते थे तो वो हमेशा इनको श्री गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं को सुनाया करते थे कि किस प्रकार से महाप्रभु आविर्भूत हुए, कैसे उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा प्रदान करी, किस प्रकार से महाप्रकाश लीला करी, किस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, हर पूरे नदिया को उन्होंने प्रेम में डुबो दिया, जन जन के मुख से हरिनाम का उच्चारण कराया, ऐसी सुंदर अद्भुत लीलाओं को सुनकर के और साथ ही साथ वो नित्यानंद प्रभु की महावदान्यता का वर्णन करते थे, उनके अद्भुतत्व का वर्णन करते थे, उनके प्रेम प्रदान करने की अद्भुत इच्छा का वर्णन करते थे। कैसे नित्यानंद प्रभु किसी भी प्रकार से प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? सबाते पागल, सबसे बड़े पागल हैं। क्या है नित्यानंद प्रभु? कैसे पागल है? क्यों पागल है? क्यों पागल है नित्यानंद प्रभु? हाँ, भगवान के प्रेम में। और पागलपना क्या प्रदर्शित कैसे होता है वो, जय आगे पड़े तार कोरे न तारन, जो सामने आ जाए, अच्छा बुरा बदमाश गुंडा उच्चक्का चोर भाग सबका उद्धार कर देते हैं, सबको प्रेम दे देते हैं, पागलपना ही। क्वालिफिकेशन तो देखो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते, योग्य तो देख लो, ठीक से पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, भक्ति करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, इंग्लिश आती है कि नहीं आती, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, जो सामने आ गया उसका उद्धार हो गया। तो उनकी महिमा सुनते थे, उनकी लीलाएं सुनते थे, और एक दिन उनको यह भी पता चल गया था कि अब श्री गौर हरि प्रभु गौर हरि अपनी लीलाओं का संवरण करके यहां से जा चुके हैं। ऐसी बातों को सुन करके उनका हृदय जो है बड़ा ही दुखी होता था विरह में। वो सोचते थे कि कब मुझे दर्शन होंगे, कब ऐसे महाप्रभु के दोबारा दर्शन होंगे, मैं तो वंचित रह गया, परिवंचित हो हम, वंचित रह गया, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो, कहां जाके श्री गौर हरि की उस अद्भुत निधि को, उस अद्भुत गौर हरि रूपी धन को प्राप्त करेंगे हम। ऐसी बातों को सोच सोच करके वो बिलक बिलक के रोया करते थे। अब साथ ही साथ वो सुना करते थे शिला रूप गोस्वामी के विषय में, शिला सनातन गोस्वामी के विषय में। इन सबका चरित्र सुन के उनके हृदय को और आनंद होता था, और अब इनका दिन प्रतिदिन महाप्रभु के दर्शन, उनके पार्षदों का दर्शन, ये वांछा जो उनके हृदय में प्रगाढ़ होती जा रही थी, प्रगाढ़ होती जा रही थी। देखिए, ये महाप्रभु के नित्य सिद्ध भक्त हैं, जिनके लिए स्वयं महाप्रभु ने प्रेम की धरोहर रखी है, पर महाप्रभु उनको भी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जब तक तीव्र लालसा नहीं जागृत हो जाएगी, तीव्र लालसा, तब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी हम वृंदावन में थे तो श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बोले कि कृष्ण अपने बाप को भी जब तक उनके नाक मुंह में पानी नहीं घुसो दिया, तब तक उनको भी छोड़ा नहीं। वसुदेव जी को जमुना जी में लेके गए, जब पानी यहां तक पहुंचा, कान में घुस गया, नाक में, मुंह में घुस गया, तब भगवान पैर बाहर निकाल के जमुना को स्पर्श करा के पानी नीचे भेजे। मतलब अपने पिता तक की ऐसी गाढ़ परीक्षा ली, तो बोले कि हमारे को आसानी से छोड़ने वाले हैं क्या फिर? तो वो जब तक तीव्र लालसा नहीं देख लेंगे हमारे हृदय में, बार बार स्कैनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि हम गाएंगे बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल फिर हमारे को प्रेम मिल जाएगा। तीव्र लालसा चाहिए होगी, तीव्र लालसा, पागलपना, फनेटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं तुम फनेटिक हो, यस। जब तक एक्सट्रीम फनेटिसिज्म नहीं होगा हमारे अंदर, किस चीज के लिए? हाँ, आलू के पराठे खाने के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, किसके प्रेम के लिए? क्या नाम है उनका? आप लोग, मैंने तो सुना है यहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, सुबह प्राणायाम वगैरह करते हो, किसके प्रेम के लिए? अभी अगर मैंने बोला होता कि यहाँ पे जो भी लोग चोर से चिल्लाएंगे हरी बोल उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और सच में यहाँ पे रख भी देता कैश, तो ऐसी आवाजें आती ही लेंटर हिल जाता। किसके प्रेम के लिए? अभी थोड़ा सा दम आया, तो जाग के रो नहीं तो नींद आएगी। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, बोरिंग सा बोलता हूँ तो सब सो जाते हैं। तो आप लोग जोर से बोलो, किसके प्रेम के लिए? क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, तीव्र लालसा, एक्सट्रीम। नरोत्तम दास ठाकुर जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जिनके लिए महाप्रभु ने प्रेम रखा है, क्या महाप्रभु व्यवस्था नहीं कर सकते थे साक्षात भगवान होने के नाते कि उनको सीधे पद्मा नदी पे ले जाए और उनको प्रेम मिल जाए? ना जी, ना। तीव्र लालसा देखना चाहते हैं, तीव्र लालसा। लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, तीव्र लालसा। जब तक ये नहीं आएगी, वो तीव्र लालसा तब तक नहीं आएगी जब तक हम बाकी लालसाओं को मेंटेन रखेंगे, खाने की, पीने की, सोने की, अच्छे वस्त्रों की, अच्छे घर की, अच्छे पत्नी की, अच्छे पति की, अच्छे बच्चों की, अच्छी एजुकेशन की। ये जितनी लालसाएं हैं जब तक ये मेंटेन रहेंगी, दूसरी जो असली लालसा वो उभर के बाहर, जब हम इसको स्पेशली नरिश करेंगे उस लालसा को जो कृष्ण प्राप्त करने के लिए है, तब वो सारी लालसाओं को साइड करते हुए उभर के आएगी। तो हमारे को उसको स्पेशल नरिशमेंट देना पड़ेगा। तो अब ये देखो कैसे नरिशमेंट देते थे, प्रतिदिन जाकर के हरि कथाओं को सुना करते थे। किन से? किससे? कृष्णदास जी से। तो अब इनकी लालसा गाढ़ होती जा रही थी कि महाप्रभु के तो तिरोधान हो गया, रूप सनातन के दर्शन करेंगे। और एक दिन अभी इनको आप पता था कि रूप सनातन के भी दर्शन, इनके साक्षात दर्शन, स्थूल रूप में दर्शन इनके भाग्य में नहीं थे। क्या था फिर इनके भाग्य में? एक दिन उन्होंने सुना श्रीवास आचार्य के बारे में। किसके बारे में? श्रीवास आचार्य के बारे में सुना कि कैसे वो प्रेम विवल हो करके महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुरी गए। जब वो पुरी महाप्रभु के दर्शन के लिए गए तो जगन्नाथ पुरी के आउटस्कर्ट पे उनको क्या संवाद मिला ब्राह्मणों से कि श्री गौर हरि अपनी लीला समरण करके यहां से जा चुके हैं। हृदय पे ऐसा आघात हुआ उनके श्रीवास आचार्य के कि मानो उनके प्राण ही चले गए। फिर भी किसी प्रकार से प्राण धारण कर गदाधर पंडित इत्यादि वैष्णवों के दर्शन के लिए वह प्रवेश किए। प्रवेश किए तो गदाधर प्रभु मरणासन स्थिति में थे। और जब ये प्रेम उनकी ऐसी स्थिति देख करके ये अपने ही शरीर को त्यागने को तैयार थे, तो महाप्रभु ने इनके उस हृदय में क्या नाम है, इनको स्वप्न दिया कि तुम गदाधर पंडित से भागवत सुनो और इससे तुम्हारा संताप दूर होगा। तो उन्होंने गदाधर पंडित के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु आप महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, आप कृपा कर मुझे भी भागवत सुनाइए। अब वो भागवत सुनाने की तो स्थिति में नहीं थे। बोले कि मैं कैसे सुनाऊँ, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं भागवत सुना सकूँ। तो इनका विशिष्ट अनुरोध और इतना प्रेम देख करके गदाधर प्रभु तैयार तो हो गए। वो बोले कि पर हुआ क्या है कि मेरे अश्रुओं के कारण ये जो मेरी भागवत की प्रति थी जो मेरे पास, इसके शब्द बह गए हैं, तो क्या तुम जाकर के मेरे लिए दूसरी भागवत ला सकते हो? तो अब ये पूरी से निकले भागवत लेने के लिए। नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती जी के पास गए बंगाल में भागवत लेने के लिए। भागवत वहां लेने के लिए पहुंचे, वहां पे भागवतम की दूसरी कॉपी तैयार करी लिख करके, और जब वापस आए थे इनको क्या पता चला, गदाधर पंडित कतरो भाव हो चुका। फिर दुखी हृदय से वापस जब ये नरहरि चक्रवर्ती जी के दर्शन करने के लिए गए तो इनको पता लगा कि नरहरि चक्रवर्ती जी का भी तिरो भाव हो चुका। अन्य वैष्णवों के वहां दर्शन करने की अभिलाषा करी महाप्रभु के पार्षदों के जो कि बंगाल में थे, तिरोभूत हो गए। अब हृदय में बस एक इनकी वांछा रह गई थी कि प्राण त्यागने से पहले मैं एक बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दर्शन कर लूं। बहुत कष्ट उठा करके चल चल के बंगाल से जो है मथुरा पहुंचे। विश्राम घाट पे इनको ब्राह्मणों से संवाद मिला कि रूप और सनातन का भी थोड़ा भाव हो चुका। सोचिए क्या हृदय की स्थिति होगी। और जब ये बात इन्होंने सुनी नरोत्तम दास ठाकुर ने, तब इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे वृंदावन जाना चाहिए, अब मुझे भी उस गाढ़ प्रेम का अनुभव करना पड़ेगा, मुझे वृंदावन जाना होगा। नहीं तो जो वैष्णव हैं, शिला जीव गोस्वामी के चरणारविंद आज भी वहां विराजमान है, शिला लोकनाथ गोस्वामी के चरणारविंद आज भी वहां विराजमान है, उनके दर्शनों से भी मैं वंचित रह जाऊंगा। और अब इनको खाना पीना सब अच्छा नहीं लगता था, ना के बगैर खाने लगी है, हमेशा एक ही भावना में डूबे रहते थे, कब जाऊंगा वृंदावन, कब होगा वो दिन, कब वृंदावन प्रवेश ही वो, कब वृंदावन में प्रवेश करेंगे हम। ऐसी भावना को धारण करके नरोत्तम दास ठाकुर अब सबसे अलग अलग रहने लग गए और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए कि उनका शरीर जर्जर होने लग गया, बीमार से पड़ने लग गए, घर वालों को चिंता होने लग गई लड़के को क्या हो गया। जब इनके ऐसी गाढ़ता जागृत हो गई तो इनके स्वप्न में एक व्यक्तित्व आए जिनकी वजह से इस संसार के लोग श्री गौरहरि के विषय में जानते हैं। आज तक जितने भी लोग महाप्रभु के विषय में जान पाए हैं उन्हीं की वजह से जान पाए हैं। जिन जिन पर उन्होंने कृपा करी वही वही महाप्रभु के विषय में जान पाए और उन्होंने ही फिर महाप्रभु की महिमा गान किया। कौन है वो? कौन? श्रीमन नित्यानंद प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा जाओ वृंदावन और फिर उन्होंने गौर महिमा का वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर तो स्वयं ही उनकी महिमा का गान करते आए हैं कि वो उनके शिष्य हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनको भी किनकी कृपा के बाद प्राप्ति हुई? महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु। तो इनके स्वप्न में भी नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु बोले नरोत्तम उठो जाओ पद्मा के तट पर और जाओ उसमें स्नान करो और वहां पे तुम्हारे को अपने जीवन का सर्वस्व प्राप्त होगा। ऐसा सुन प्रेम में विवल गिरते पड़ते नित्यानंद प्रभु के उस सुंदर श्री मुख का स्मरण करते, उनके सुंदर चरणारविंदों का स्मरण करते हुए वो भागे पद्मावती की तरफ भागे। जब हमारे हृदय में प्रेम होगा तो हम भी भागेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल सप्तग्राम से भागते भागते जगन्नाथपुरी तक गए थे। कैसे गए थे? 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं भाग सकते हैं। सही बात है कि नहीं? नरोत्तम दास रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल से भागना शुरू किए और पूरा दिन भागते थे, रात को विश्राम करते थे, पूरा दिन भागते थे। 18 दिन का रास्ता 12 दिन में तय कर लिया और उसमें भी सिर्फ 3 ही बार कुछ ग्रहण किया, एक बार छाछ, एक बार दूध और एक बार कुछ और ग्रहण किया था, हमें याद नहीं है, 3 ही बार ग्रहण किया। तो ये भी भागे पद्मावती की तरफ। पद्मावती में जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश किए पद्मावती में उफान आने लगा और इनके हृदय में पद्मावती नदी के माध्यम से वो प्रेम की धरोहर समा गई। श्याम वर्ण के थे ये जन्म से परंतु इनका रंग गौर हो गया। कैसा हो गया? गौर वर्ण के हो गए। उस स्थान का नाम है प्रेम स्थली, आज भी वो स्थान दर्शनीय है। तो अब जब नरोत्तम दास ठाकुर गौर वर्ण के हो गए और बावड़े हो गए, पागल हो गए, जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे, पूरा दिन देखने पर इनके माता पिता को जब नारू घर पे नहीं दिखे तो सैनिकों इत्यादियों को भेजा, कोई नरोत्तम को ढूंढ नहीं पाया। कैसे ढूंढते? जो देखे भी तो उन्होंने देखा तो उस श्यामला था, ये गौर वर्ण का है। तो सबने बताया कि आपका पुत्र तो नहीं मिला पर वहां नदी के तट पर एक बच्चा पागलों की तरह नाच रहा है जवान। तो ये देखने के लिए गए तो माता ने जब ध्यान से देखा कि लड़का तो मेरा, इसका रंग को क्या हो गया? और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आंखों से क्रंदन कर रहे थे। माता ने जब चिल्ला चिल्ला के बोला नारू नरोत्तम नरो नारू, तो ये बाह्य चेतना में आए। बाह्य चेतना में आए, माता ने इनको पकड़ा तो माता को लगा किसी भूत ने पकड़ लिया, इसका रंग भी बदल गया, पागलों की तरह रो रहा है लड़का। तो बोले क्या हुआ बेटा तेरे साथ? बोले पता नहीं, मैं तो यहाँ स्नान करने आया था, एक गौर वर्ण का बालक आया, उसने मेरा आलिंगन कर लिया, आलिंगन करके मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। जैसे मेरे हृदय में प्रवेश किया तो ना जाने मुझे क्या हो गया। वो उस परिस्थिति को अब उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है, उसके बाद से तो बस मैं अब केवल आपको देख रहा हूं। माता सोची कोई गोरे रंग के भूत ने पकड़ लिया इसको। किसने पकड़ लिया? यही हमारे जीवन की अभिलाषा है कि एक गोरा भूत हमें पकड़ ले। बस ध्यान रखे कोई ब्रह्मचारी गोरी भूतनी के चक्कर में ना पड़ जाए, गोरे भूत ही ठीक है हमारे लिए। तो अब माता उनको लेकर आई पर माता बस, माता का हृदय फटा सा जा रहा था कि क्या हो गया मेरे लड़के को। तो माता ने बोला क्या हुआ तुझे? बोले माता बस अब मेरा एक ही इलाज है। बोले क्या? मुझे वृंदावन जाने दो। वृंदावन कैसे जाने दें? वो बोलते कि मैं वृंदावन जाके ठीक हो जाऊंगा, माता सोचती है ये वृंदावन गया तो जीवित वापस नहीं आएगा, कौन ध्यान रखेगा इसका। अब तो क्योंकि सबने देखा कि इसके वृंदावन जाने की ऐसी तीव्र इच्छा है, राजा तो वैसे ही थे, चारों तरफ सैनिक लगा दिए कि ये भागने ना पाए। अब क्या करें, कुछ दिन बीते, इन्होंने स्मरण किया रघुनाथ दास गोस्वामी का कि रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको भी नहीं भागने दिया गया था। ये भागने की परंपरा कितनी अद्भुत है, भागने नहीं दिया जाता फिर भी भागते हैं। अभी एक सत्य घटना बता रहे हैं, ये 3 साल पहले की घटना है। राधा पास साथी मंदिर में एक भक्त जो है ब्रह्मचारी बनना चाहता था, वो आया पर उसके घर परिवार वाले किसी तरीके से उसको ले गए, गांव में ले गए और उसका विवाह जो है स्थिर कर दिया। विवाह होने लगा, फेरे होने का समय था, पर वहाँ पर क्या प्रथा है कि जो पुरोहित होते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा करके बीच में कुछ प्रश्न पूछते हैं। फिर तो जब पर्दा किया तो भाग गया पीछे से भाग गया, घर वालों ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिला। 3 दिन के बाद पड़ोस के किसी गांव में पेड़ के नीचे बैठ के रोता हुआ मिला कि मेरे को क्या कर दिया मेरे घर वालों ने, और घर वाले इतने दुखी हुए कि तूने ऐसा काम कर दिया तेरी दोबारा शादी नहीं होगी। वो बड़ा खुश हुआ ये अच्छा काम हो गया, फिर तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो भागने की परंपरा, वो भागना चाहते थे, कोई अवसर नहीं, चारों तरफ सैनिक। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि बुद्धिमान थे तो इन्होंने विचार किया कि अब मेरे को भी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह ही करना पड़ेगा। अब ये घर के कार्यों में ऐसे लिप्त हो गए, सबके साथ खुल मिल के बात करने लग गए, हृदय में तो गाढ़ उत्कंठा थी श्री वृंदावन धाम जाने की, पर बाह्य रूप से क्या करने लगे, लोक व्यवहार, बड़े प्रेम से सबके साथ बात करते, खुल मिल के माता के भी हेल्प करते, पिताजी के कामकाज में भी हेल्प करते, थोड़ा सबको टाइट टूट भी कर देते थे। कोई सैनिक ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई घर का काम सही से नहीं, और उसको टाइट भी कर देते, लगने लग गया कि भैया ये आदमी नॉर्मल हो गया, अब तो लड़का हमारा ठीक हो गया, तो इतनी अब थोड़ी टेंशन कम होने लग गई। तो वहां के जो बहुत बड़े जमींदार थे उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी कि इस लड़के के दर्शन करें। लड़का सामने से गोरा हो गया, बहुत सुंदर है, वो सुना था पहले से ही कि श्याम वर्ण का होके भी सुंदर था, अब तो गोर वर्ण का हो गया, मेधा उसकी तीव्र है, तो उसके दर्शन करें, उसको अब लिवा लाओ। उन्होंने अपने यहाँ से कुछ घोड़े भेजे, घोड़सवार भेजे, जाओ नरोत्तम को लेके आओ। कृष्णदत्त जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को भेजे, क्योंकि अब तो वैसे भी लड़का नॉर्मल था, साथ में कुछ सैनिक भेज दिए, सैनिक भेज दिए कुछ। अब ये जा रहे थे, जाते 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 अब इन्होंने विचार नहीं किया, बुद्धि कितनी तेज है, ये सब भी तो सोच सकते थे, कि उन्होंने ऐसा चकमा दिया सबको और वहाँ से भागे। कहाँ भागे, कहाँ भागे, भागे जाए, भागे जाए, भागे जाए। और सैनिकों को तो चकमा दे चुके थे, सैनिकों को पता ही नहीं चला, ढूंढने गए सैनिक, गए 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 और कई किलोमीटर बाद जाके पीछे से 200 सैनिक और भेजे कृष्णदत्त जी ने, चारों तरफ से सैनिक ही सैनिक भेजे। माता रोने लगी, और जब कुछ सैनिकों का बहुत बड़ा एक टोला नरोत्तम को मिला तो नरोत्तम ने ऐसी ऐसी मधुर मधुर बातें करी कि वो कंफ्यूज हो गए सैनिक, और उनको कंफ्यूज करके नरोत्तम फिर भागे 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 भागे। और बहुत भागने के बाद, पर जब ये भाग रहे थे तो इनके साथ उनके सैनिकों ने एक दो लोग भेजे और साथ में धन भी भेजा कुछ, पर नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको भी रास्ते में कहीं और भेज दिया, खुद अकेले हो गए। बोले हम तो कैसे जाएंगे वृंदावन भागते हुए अकेले जाएंगे वृंदावन जाते हैं, हम जनरली हम वृंदावन जाते हैं ऐसे, वहाँ पर रूम बुक होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, और कॉन्ग्रीगेशन साथ में तो एसी वाले रूम होने चाहिए, बस भी एसी वाली होनी चाहिए, प्रसाद लग्जरियस होना चाहिए। अकेले जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या खाने को मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और रास्ते में इनको श्री गौर हरि ने दर्शन दिए इनके स्वप्न में, जब ये बिल्कुल थक हार के गिर गए। स्वप्न में दर्शन दिए तो ये समझ नहीं पाए, फिर गौरहरी सामने से आए बालक का रूप धारण करके, ब्राह्मण का, दूध का गिलास दिए। इन्होंने दूध का गिलास लिया और गौरहरी का स्मरण करते हुए गिलास साइड पर रखे सो गए। तब इनके स्वप्न में रूप सनातन प्रकट हुए। अरे मूर्ख नरोत्तम, ये जो ब्राह्मण थे साक्षात गौरांग महाप्रभु थे, ये दूध पियो और इस दूध को पीने से तुम्हारे में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यहाँ से वृंदावन तक तुम्हारे को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने वो दूध पिया और फिर वहाँ से फिर भागते भागते हरि नाम का उच्चारण करते हुए विश्राम घाट पहुँचे। हरे कृष्ण, समय पूर्ण हो गया। सब वो विश्राम घाट पर पहुँच के आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ जरूर समझी कि जब किसी के हृदय में तीव्र लालसा होती है, तीव्र लालसा, चाहे वो कोई भी हो, अरे यशोदा मैया की वॉट लगा दी भगवान ने, जब तक वो पूरी तरह से निष्ठा ही नहीं करनी ना कि अब तो इसको बांधे बिना मानूंगी नहीं, तब तक बंधे नहीं। जब तक हमारे हृदय में एक, और जिस समय ये स्थिति आ चुकी थी यशोदा माई की, वो सब कुछ भूल चुकी थी, घर के सारे काम धंधे सब भूल गई थी, एक ही चीज याद रह गई थी उसको, इस लड़के को आज बांध के छोड़ूंगी। तो जब हमारे हृदय की स्थिति आएगी ना कि अब कृष्ण को पाके ही छोड़ेंगे और कुछ नहीं, तब तक कृष्ण हमारे को टाइट करके रखेंगे। जब बाकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, एक ही इच्छा रह जाएगी कृष्ण सेवा की, तब कृष्ण मिलेंगे। तो हम नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम पे कृपा करें और हम उनके चरणों के प्रति आकर्षित हों, और जैसा आकर्षण वो गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्राप्त किए थे, उसका एक अंश मात्र भी अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय।